अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव धानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौर गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरमितु मन्दे कृतेन्दीवरम् जटं जागुदरोचिसंविदधसमुपटम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्याये आज একটি বিশেষ তিথি আজকে দিন যশোদা মাইয়া কৃষ্ণকে ওখল দ্বারা রজ্জুতে রজ্জুতনা প্রেম রজ্জুতে বাৎসল্য রসে স্নেহময়ী রজ্জুতে তাহাকে বন্ধন করেছিল পরবর্তী বৎসরেতে আজকে দিনে অন্নকূট কৃষ্ণ বাবার নিকটে বসেছিলেন কোলে বসে বললেন বাবা আজকে কি উৎসব মা সকাল থেকে দেখছে পুরি বুয়া পকোয়ান ইত্যাদি সব বানাচ্ছে ব্রজবাসীরা সব করছে চারিদিকে খুব উৎকণ্ঠা কিসের জন্য আয়োজন কোন রহস্যযুক্ত কথা হয় তার সন্তানকে তার মিত্রকে বন্ধু বান্ধবকে বলা উচিত অত আপনি বলুন কিসের জন্য আয়োজন তখন বাবা বললেন যে আমাদের পরম্পরা থেকে এইটি আমরা করে আসছি আজকে ইন্দ্রের পূজা ইন্দ্রের যজ্ঞ হবে এবং এই সামগ্রীর দ্বারা তাকে ভোগ লাগানো হবে তখন তিনি বললেন কৃষ্ণ বাবা আমি আপনার নিকটে একটা জিজ্ঞাসা করি এই ইন্দ্রে পূজা কিসের জন্য করা কি উদ্দেশ্য এটা ইন্দ্রকে এবং আমরা তার পূজা করি তার ফল কি তিনি বললেন পৃথিবীতে ব্রজেতে জল বর্ষা হয় এই জল গরুরা ব্রজবাসীরা সকালে পান করে তাতে জীবিত থাকে এই দ্বারা জলের দ্বারা কৃষি হয় কৃষিতে অন্ন হয় অন্নেতে সব লোক বেঁচে থাকে অতএব মেঘ স্বরূপ অথবা মেঘের আলি ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য আমাদের এই আমরা করে আসছি তখন কৃষ্ণ গম্ভীর হয়ে বললেন বাবা আমি তো জানি কর্মের দ্বারা সব কিছু হয় যেখানে ইন্দ্রের পূজা হয় না সেখানে বর্ষা হয় কি না হয়, সেখানকার রোগ জীবিত আছে কি না, সেখানকারও রোগ জীবিত আছে। কর্মই সবকিছু, কর্মের দ্বারা সবকিছু হয়, কর্মে ফল জীব ভোগ করে। আবার রজগুণের দ্বারা জগতের সৃষ্টি হয়, আবার রজগুণের দ্বারা মেঘ সঞ্চারিত হয়, তদ্বারা বৃষ্টি হয়, আর তাতে অন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের এর মধ্যে কোনো প্রয়োজন নাই। আমার যদি পরামর্শ শুনুন, তাহলে ইন্দ্রে পূজা বন্ধ করে গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা করাবো, ইনার জন্য জল বর্ষা হয়, ইনার কৃপাতে বৃষ্টি হলে ঘাস হয়, আমরা গোচারণ করি তাতে ঘাস খেয়ে গরুরা দুধ দেয়, সমস্ত প্রাণী বাঁচে। অতএব ইন্দ্রে পূজা কিছু করা উচিত নয়। ইন্দ্র বুঝেছিলেন কৃষ্ণ যে ইন্দ্রের অভিমান, যে আমি সব কিছু করি, আমার উপরওয়ালা কেউ নাই। কৃষ্ণ বললেন তার ভাবনা, আমার ভক্তগণের কোন দেবতা দেবীর কোন পূজা করা উচিত নয়, একাত্মিক ভাবেতে ভগবানের পূজা করবে। তো এরা করছে, এই দেখে পরবর্তীকালে এইরকমই হবে, এই জন্য পূজা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। নন্দ বাবা তাহার যুক্তি ছিল না, আশ্চর্যচকিত হলে যে ছোট বাচ্চা অত জ্ঞান, আচ্ছা তা তাই হোক, এই বলে যা কিছু প্রস্তুত হচ্ছিল দ্রব্য, সেই দ্রব্যগুলিকে ছাকড়াতে গরু গাড়িতে সব নিয়ে সমস্ত ব্রাশি চৌরাশি ক্রোশে সেই যতিপুরা আলোর গ্রাম সেইখানে উপস্থিত হলেন। আর তাহারা যেরকম কৃষ্ণ বলেছিলেন গো পূজা করলেন, গরুকে হলদি আর তেল মিশিয়ে লাগানো হল ছাপ, তাদের গো পূজা করা হল, গরু পরিক্রমা করা হল, ব্রাহ্মণদেরকে পূজা করা হল, আর পূজা করে তাহাদের পরিক্রমা করা হল, আর ব্রাহ্মণদেরকে বলা হল আপনারা যজ্ঞ করুন হবন করুন, তখন তারা হোম ইত্যাদি করতে লাগল। আর তারপরে গিরিরাজকে প্রচুর পরিমাণেতে যা কিছু হয়েছিল সে অন্যের কূট করা হল, পর্বত মতো অন্যের পর্বত, মালপুয়া কচৌড়ি পুরি পকোয়ান 56 প্রকারের, আর তাকে ভোগ লাগানো হল। ভোগ লাগাবে পরে কৃষ্ণ স্বয়ং একটি স্বরূপ ধারণ করে আর তার উপরে তে দাঁড়িয়ে গেলেন বিরাট আকার। তখন কৃষ্ণ বললেন দেখো ইন্দ্র কোনদিন তো প্রকট হয় নাই, আজকে গিরিরাজ প্রকট হয়ে আমাদের ভোগ নিচ্ছে। আর তারপরে নিজে প্রণাম করলেন, নিজের স্বরূপকে নিজে প্রণাম করলেন, আর ব্রজবাসীকে বললেন যে সে তোমরাও প্রণাম করো, দেখো তো যে কিরকম হতে দু হাতেতে হাঁটছে। ওরা সকলকে সকলই প্রণাম করলো গিরিরাজ। তখন গিরিরাজ ওই কৃষ্ণ স্বরূপ এত যা কিছু দু হাতেতে সব পান করে খেয়ে নিলেন, আর বড় বড় কুণ্ড তথি দুগ্ধ আর সব যা ছিল সেও খেয়ে নিল, বলে যে আর আরো নিয়ে আসো, আরো আনো, আরো আনো। এই জন্য ওই স্থানের নাম হয়ে গেল অন্য গ্রাম। কৃষ্ণ হাত জোড়ে বললেন, প্রভু আপনার পেট আমরা ভরাইতে পারব না, আপনি তাইতেই তৃপ্ত হয়ে যান। তখন গিরিরাজ বললেন, আপনারা সকলেই যা ইচ্ছা বর মাগুন। তখন ব্রজবাসীরা কি বর মাগুন, আমাদের লালা কৃষ্ণ সুখে থাক, ব্যাস এই বর মাগুন। বর দিয়ে দিলেন, তারপরে ব্রজবাসীরা খুব খেলো পেল, যা পকমান টকমান প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল আগে তিনি সব খেয়ে নিয়েছেন, আবার তাহার দৃষ্টি মাত্রেতে আবার সব ভর্তি হয়ে গেল। তখন ব্রজবাসীরা খেল, গোপীরা শৃঙ্গার করল সব, আর তারপরে খেয়ে দে ছাকড়া মানে গাড়িতে বসে গোপীরা, বৃদ্ধ আর বৃদ্ধ পুরুষ বাচ্চা গাড়িতে বসল, আর ব্রজবাসী গোপরা কীর্তন করতে করতে আগে, মেয়েরাও কীর্তন করতে করতে আগে, খেতে পেতে আনন্দ করতে করে, নৃত্য করতে করতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে পরিক্রমা করল। এইটা তো হল পরিক্রমা। তারপরে সব নিজে নিজে ঘরে গেল। ইন্দ্র দেখল যে সে ও আমার পূজা বন্ধ করে আমার অনাদর করেছে, আমি ব্রজকে নষ্ট করে দিব, গোধন নষ্ট করে দিব, কোন গোপকে এই পৃথিবীতে থাকতে দিব না, বাজার বালিশ মূর্খ এই অস্তব্ধ পণ্ডিত মন্ন আমার পূজা বন্ধ করে দিয়ে ওই ওর একটা ছেলের কথাতে বন্ধ করে দিল, আমি দেখাচ্ছি। এই বলে সম্বর্ধক মেঘ আদেশ দিলেন, তোমরা ব্রজকে ডুবিয়ে দাও, গরু সব মরে যান, ব্রজবাসীরা সব মরে যান, একটা ব্রজের নিশানা থাকবে না, আমার পূজা বন্ধ করেছে। সম্বর্ধক মেঘগুলিকে বলে দিলেন, বলে যে আমিও এরাওতে এসে আসছি, আর তোমরা বর্ষা করো। মুসলাধার, মুসলাধার মানে মুসল মোটা, ওই রকম হতে বৃষ্টি হতে লাগলো প্রলয় কালে, রোকে নাই, সারা ব্রজ ডুবতে লাগলো, ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো। নন্দ বাবা আর সব ব্রজবাসীরা বললো যে ওই ছেলের কথাতে ইন্দ্রে অবজ্ঞা করা হয়েছিল, এই ইন্দ্রের কাজ। তখন ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো। কৃষ্ণ তখন সকলকে দেখে বললেন, চিন্তা করো না, গিরিরাজের পূজা করেছে, গিরিরাজই তোমাদেরকে রক্ষা করবে। ওই জন্য ছত্রের মতন একটা বালক যেরকম হোক ছাতা টান এলে কনিষ্ঠ আঙুলিতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে উঠিয়ে দিলেন, বিরাট গর্ত হল। বলেন যে সব ব্রজবাসীরা ছেলে পেলে মেয়ে যা পেল সব লোক এই ভিতরেতে প্রবেশ করে আরাম করে, এখানে বিশ্রাম করুন, মনে করবেন না যে এইটা পড়ে যাবে, গিরিরাজ নিজেই উপরে থাকবে, কোন চিন্তা নেই, আপনার সব লোক আসবে। বলাতে সব লোক বিরাট গর্ততে ওর মধ্যে প্রবেশ করল, আর তখন প্রথমবার ব্রজের যে গোপীরা অল্প বয়স্কা, আজকে প্রথম দিন কৃষ্ণের নিকট হল, মানে কৃষ্ণ দেখাচ্ছেন যে ওদেরকে আমি কত বলবান, দেখো গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ। গোপীরা কি করছে, নিজের চক্ষুর উপরেতে গোবর্ধনকে ধারণ, যদি পড়ো গিরে যাও তাহলে ভস্ম করে। এই গোবর্ধন কে ধারণ করেছে, কৃষ্ণ না, কৃষ্ণ ধারণ করে, শক্তি ধারণ করেছে, তো কৃষ্ণের শক্তি কি? বাম অঙ্গেতে যে থাকে শক্তি, সেই শ্রীমতী রাধিকা। এই শক্তি তার ধারণ করেছে কনিষ্ঠ মুনি। শক্তি না থাকলে কে কি করবে? এই জন্য অমূর্ত রূপেতে শক্তি আছে, আই বাম কনিষ্ঠেতে তিনি ধারণ করেন। সাত দিন আই দিকে তার সখারা বলছে যে সেইটা কি করবে, আর নিজের নিজের লাঠি নিয়ে ধারণ করছে। ওরা মনে করছে যে আমরাই ধারণ করছি। এইরকমের সাত দিন পর্যন্ত তিনি ধারণ করেন। একটু এদিকে ওদিকে হন নাই, কোন পাশও পরিবর্তন করেন নাই। দেখে সকলই আশ্চর্যচকিত হয়ে গেল, এই কিরকম ছোট ছেলে বিরাট গোবর্ধন গিরিরাজকে ধারণ করেছে। ট্রান্সলেশন,
Brahmanas began performing havan, fire sacrifice. All the preparations that had been cooked for Indra, they made one mountain. Therefore, Anakut, Ana means rice, and Kut means mountain. Therefore, collecting all the more than 56 types of preparations, they made a huge offering and gave to Giriraj. Therefore, Krishna took one sarup from on top of Giriraj in the form of Giriraj Maharaj. And in another form, he was delivered to Vasi. Then Krishna said, look, Giriraj Maharaj is giving us darshan. Many years we worshipped Indra, but Indra never gave us darshan. Then Krishna bowed to himself in the form of Giriraj and instructed all the Vrishvasis, you should also do pranam to Govardhan. Giriraj took two hands, and with two hands he was eating all the offerings. He drank all the kuns, he took all the sweet rice, and he was calling, Anayo, Anayo, bring me more rice.
Bring more.
That's how Krishna said, O Giriraj Maharaj, your stomach is unlimited. We cannot satisfy you. Please be satisfied by your own greatness. Then Giriraj said, whatever benediction you want, I will give you. So all the Vrishvasis only pray for one thing. May our Krishna live a long life. May our Krishna be happy. Therefore, all Giriraj have eaten all prasad, and by his glance, all the prasad returned. Therefore, the Vrishvasis began performing Parikram. All the old persons and the babies sat in the bullock carts, and everyone began performing kirtan. As they were performing kirtan, they were eating the prasad and dancing, and with great ecstasy they performed Giriraj Parikram. At the end of the Parikram, they returned back to their houses. Meanwhile, Indra was very angry. Hey, they stopped my worship. I will finish Vrindavan. As for that Krishna, he's nothing but a loud mouth. Proud. He thinks himself very learned. He's this, he's that. Indra began giving many nice qualities of abuse. Then Indra called the Samantha clouds, which are called at the time of universal destruction. Therefore he ordered the clouds, kill all the cows, kill all the Vrishvasis, and finish Vrindavan. Indra said, I will personally come on my elephant carrier, Ayavata. Therefore all the rain began coming, very strong. And all the Vrishvasis became afraid. Oh, we have disrespected Indra. This is our punishment. Krishna said, don't worry. We worship Giriraj, therefore Giriraj will give us protection. And with the left pinky of his left hand, he lifted Govardhan. All Vrishvasis came underneath the umbrella of Giriraj. And Krishna was saying, come here. Don't think that Giriraj will fall. Therefore, that was the first time the gopis had the chance to be near to Krishna. And Krishna was a little showing how powerful I am. That time the gopis were thinking to give it Giriraj. Giriraj, if you fall and cause disturbance to Krishna, we will finish you by our glance. Therefore, who really lifted Govardhan? Krishna has no power to lift Govardhan because he can only desire. But his Shakti fulfilled his desire. Therefore, Radharani, as the Shakti of Krishna is always on the left side of Krishna, therefore Krishna showed that actually Radhika lifted Govardhan by lifting on the left hand. And for 7 days and seven nights, the Vrishvasis never looked left or right. They had full darshan of Krishna there. The friends of Krishna were thinking, therefore, Shakti is always there. Either she is manifest in the form of Vrishabhakunalini, or she is there present inside Krishna in an unmanifest form. But his Shakti is always there. The friends of Krishna, like Sridharta Bhagavad Gita, what can Krishna do? He is a weakling. Therefore, with their sticks, they also propped up Govardhan.
Oh, Rasananda. এরপরে কি হলো বলো? এরপরে কি হলো? যতদূর বলেছি এরপরে শুনো নাই,
পূজা তো হয়ে গেল, পূজা তো হয়ে গেল, ইন্দ্র তো ক্ষমা চাইল,
বর্ষা হতে লাগলো, তারপরে কি হলো?
সব লোক ব্রেজবাসীরা স্মরণ নিল। তারপরে
গুরবী গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ বলো হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম হরি রাম 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 হরি হরি। সর্বপ্রথম মেয়ে গুরুপাদ পদ্ম বিথিলা প্রবিষ্ণু বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ গোচরণ কমল মে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ নমস্কার প্রণাম করতাম। তৎপশ্চাৎ শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম পরিপ্রাজাচার্য চতুর্দী স্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ গোচরণ সরজনী শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতাম। উপস্থিত দণ্ডপাতগণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সবই চরণ অভি অভি হোক শ্রবণ করতে কেসে কৃষ্ণ ইন্দ্র পূজা বন্ধ করবা দিয়া কেউকি ইন্দ্র কাজ বহু বড় অভিমান থাকে ব্রজবাসী লোক মে সেবা পূজা করতে হগর মেয়ে কৃপা নেই করতো ये लोग भूखे मर जाएंगे क्योंकि पानी बरसाने वाले मैं ही हूं। लेकिन उसको पहले जो था लेकिन जब भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं श्री बलदेव प्रभु के साथ में और उनको राधे सखी और सखा और गोपियों के साथ में कृष्ण ने देखा इंद्र का तो बहुत बड़ा अभिमान है। फिर इंद्र कौन है, इंद्र किसको इंद्र पद प्राप्त होता है, कहते स्व असमृद्ध यज्ञ करने पर तभी किसको ये इंद्र पद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ब्रज रज है, कहते एक ब्रज रज की इतनी शक्ति है, एक ब्रज रज ही ऐसे अनंत कोटि इंद्र को सृष्टि कर सकता है। करोड़ असमृद्ध यज्ञ करने पर भी एक ब्रज रज की भी प्राप्ति नहीं कर सकते। और जिस ब्रजवासी लोग कृष्ण सोच रहे हैं कि इंद्र पद किसने दिया इसको, कहते मैंने ही वामन अवतार में मैंने ही इसको दिया इंद्र पद है। लेकिन अभी सबरा अभिमान है, और ये ब्रजवासी लोग कौन है, ये नंद बाबा कौन है, कहते जिसका चरण की जूती को मैं स्वयं सिर पर धारण करता, कहते ये सखा लोग कौन है, कहते जिनका झूठन मैं स्वयं खाता, ब्रज गोपियां कौन है, राधा की स्वयं कृष्ण थाई लादिन शक्ति और उनको आनंद चिन्मय रस की ये ब्रज गोपियां सब प्रतिभा मूर्ति है, इनका एक चरण की धूल भी ये इंद्र कभी ना कभी बन नहीं सकता है। जिन दासों को मैं स्वयं करता हूँ, जिनको चरण में मैं स्वयं प्रेम की भीख मांगता हूँ, अभी इंद्र का अभिमान है, अभी मैं बज गया इनका राजा, इतना बड़ा अभिमान है। इसलिए भगवान, और दूसरी बात है भगवान जगत में कृष्णा एवं कार्ष्णा यह पूजा को स्थापन करना चाहते हैं। और श्री ब्रज में अगर कोई उपास्य है, केवल एक ही उपास्य है गिरिराज गोवर्धन, ब्रज के कोई और दूसरे उपास्य नहीं है, क्योंकि ये सर्व अभीष्ट प्रदात्मा, अगर जितने सारे इच्छाएं हैं अगर कोई पूरी कर सकती है, ये गिरिराज ही सारी इच्छा को पूरी कर सकती है। और क्या कभी ब्रज प्रेम को अगर कोई दे सकते हैं, दे सकता है, कि गिरिराज गोवर्धन ही दे सकता है। इसलिए ब्रज गोपियां राधा रानी कहती है हंसाय अग्रि अबला हरिदास ब्रज, इसलिए ये हरिदास हमें ये वर्ज्य है, ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं, गिरिराज गोवर्धन इनका नाम भी गोवर्धन है। गो मतलब इंद्रिया, वर्धन मतलब बढ़ाना, किसको इंद्रियों को बढ़ाती है कहते कृष्ण एवं कृष्ण, ये दोनों को इंद्रियों को ये सेवा करने वाले गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कृष्ण उन्होंने इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवा दिया और इंद्र पूजा को बंद करवा करके उन्होंने बड़े धूमधाम से उन्होंने श्री गिरिराज पूजा की उन्होंने प्रतिष्ठित किया है और प्रतिष्ठित करके सारा दुनिया में स्थापित किया। आप लोग पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करो। जब ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, हर साल ब्रजवासी पूजा करते थे इंद्र की, लेकिन जब पूजा का समय चला गया इंद्र ने पूछा उनको दूतों को कुछ भैया ये क्या बात है, ब्रजवासी तो हर साल मेरे पूजा क्या करते थे लेकिन इस बार मेरा पूजा पूजा कुछ नहीं किया, क्या हो गया। किसी दूत ने आकर के देखा कृष्ण तो ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाया, सब इंद्र पूजा पूजा बंद करवा लिए। किसने जाकर के खबर दिया तो इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया और क्रोध हमारे महाराज को बता रहे थे उन्होंने बाली अज्ञान बोल करके उन्होंने स्तुति की, लेकिन सुभा सरस्वती ने उसका सब उल्टा उल्टा उन्होंने अर्थ किए, सीधा सीधा उन्होंने पूरा स्तुति पर कृष्ण की अर्थ कर दी। अब इंद्र को तो बड़ा क्रोध आने पर उन्होंने संपर्क में पवन को उन्होंने बुलाए, बुला करके बोले ऐसे प्रण मचाओ ब्रज में कोई से ब्रज नाम करे कोई चीज नहीं रहे। तब उनको आदेश पा करके इतने जोर से बारिश और प्रलय देते आंधी तूफान बारिश हुई, उसी समय सारे सारे ब्रजवासी आकर के कृष्ण के चरण में शरणापन्न हुए। बोले कृष्ण देखो तुम्हारी मत सुन करके हमने पूजा बंद करवा दिया, देखो इंद्र क्या कर रहे हैं। कहते कोई चिंता मत करो, आप लोग जिनके पूजा किए हो वो स्वयं अपना चरण में आश्रय देंगे, चलो हम सबके सब गिरिराज तले में जाते हैं और सबके सभी गिरिराज तले में आए, जैसे कि हाथी जैसे कि कमल फूल को खा ले ऐसे ही कृष्णा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने एक हाथ में ही कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने पूरा पूरा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की, अभी बोले सबके सब आ जाओ गिरिराज तले में, सबके सब गिरिराज गोवर्धन को उन्हें सहारा लिया। अभी जब सातवीं हो गया तो इंद्र ने कहा देख करके आओ तो ब्रज नाम का कोई चीज है कि नहीं, ब्रज संपूर्ण प्रलय में तत्न से हो गया कि नहीं, देख करके आओ। ये गोपाल चंद्र जी को सामने एक दूत आए, आकर उन्होंने पूरा गिरिराज का ऊपर उन्होंने देखा, ऊपर ऊपर देखा, ऊपर ऊपर देखा तो देखो पूरा पूरा एक चिकित्सा भी नहीं, सबके सब ध्वंस हो गए। तो मैंने आगे देखा एक चिकित्सक भी नहीं, जाकर बोला महाराज संपूर्ण ब्रज में तो एक चिकित्सक भी नहीं, सबके सब ध्वंस हो गए। तो मैंने और एक दूसरा देखा तुम जाकर के देख करके आओ ब्रज का क्या स्थिति है, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, उन्होंने नीचे आकर के देखा, नीचे आकर के देखा वो कृष्ण कहीं यार छोटा सा था, वो छोटा सा लाला कनिष्ठ अंगुल पर एक चरण में खड़े हुए और गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखे और जितने सारे ब्रजवासी लोग बड़े आनंद पूर्वक उसको नीचे कृष्ण का मुखारविंद को दर्शन करते हुए कृष्ण की मुख कमल का आस्वादन कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से कीर्तन कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति की रस का आस्वादन कर रहे हैं। देखा एक चिट्ठी तरफ भी नहीं करे, यहाँ पर धूम उड़ रहे हैं। उन्होंने जाकर बोले महाराज, तब इंद्र ने कहा ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं, कहते ब्रज का क्या सत्यानाश हो जाएगा, तेला सत्यानाश हो गया। कहते क्यों, कहते ये बोल रहा था क्या चिट्ठी तक भी नहीं, मैंने देखा कि चिट्ठी तक भी नहीं मरा है, वो तो कृष्ण जिसको छोटा बात बच्चा समझते हो वो तो इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को एक अंगुल पर धारण करके रखे और सारे ब्रजवास लोग कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय कृष्ण कीर्तन कर रहे आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। इंद्र तो इतने डर गया, कभी बच्चा है कौन, देखा ही बच्चा कोई साधारण नहीं, जिसने मेरे को ये इंद्रपद दिया था वामन अवतार में उनको आंशिक 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 मूर्ख है उसका को कारण कारण ये कृष्ण ने दिया। ये कोई साधारण बच्चा नहीं। इंद्र कितना डर गया श्री आनंद वृंदावन जब रचना करते हैं अभी इंद्र अमरावती जो अमरावती सर्व समृद्ध पूर्ण है सर्व ऐश्वर्य पूर्ण अमरावती अभी इंद्र अभी अमरावती में जाकर के चंचल चित्त हृदय पर अशांत रहे तू कर अभी क्या होगा लगता है ये इंद्र पर ही मेरा हाथ से गया। लेकिन मैं बृहस्पति को पास में जाता है देखो गुरु बृहस्पति को पास में देखो गुरु बृहस्पति अभी मेरे को विपत्ति आ गई तो क्या विपत्ति है जैसे मैंने ये इंद्र पूजा रद्द करवा दिया मैं सोच रहा था मैंने गोकुल को मैंने ध्वंस करने के लिए प्रयास किया मैं सोच रहा था कि कृष्ण कन्या भी छोटा बच्चा है लेकिन अभी देखा नहीं ये छोटा नहीं तो छोटा है ये तो छोटा ही तो सर्व कारण का कारण भगवान है। अभी मेरा क्या हुआ कि आप ही सूर्य आप कृपा कर मुझे बराबर कर दो तो उन्होंने बोला एक काम करो पहले चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं ब्रह्मा जी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो उन्होंने बृहस्पति को लेकर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में गए तो तुमने सबने साई कथा सुना है ब्रह्मा जी ने कहा तुमने सर्वनाश कर दिया उसके लिए पहले मेरे ऊपर भी यही विपत्ति आई है कुछ दिन पहले मैंने सोचा कृष्ण जब उन्होंने बंद किया और बड़ी जोर से जब जयकार लगाया कृष्ण कन्या लाल की जय जब लोगों ने उसको पहुंचा दिया उस समय मैंने भी देखा किसी जयकार लगा रही आकर के मैंने देखा उसको ब्रह्मांड ब्रह्मांड फटते हुए एक ज्योति कृष्ण को चरणों में प्रवेश किया और उन्होंने आगे लीला देखने के लिए देखा सखाओं को साथ में इस पूजन करते हुए मेरा तो झुकी भ्रमित हो गया मैं भी उसको बचड़े और सखा को मैंने चुराया लेकिन बाद में मैं इतने विपद में फंस गया था कृष्ण स्वयं विपद जाकर के प्रभाव लग गए थे मेरा तो मेरा ही अवस्था खराब हो गया था बड़े विपद में मैं भी पड़ गया था फिर आपने क्या किया बड़े माफी मांग करके उनको चरण में गिर गया तो बड़े माफी मांग के बड़े जोर जोर उठाए कहते ब्रह्मा जी आप ही मुझे बताइए अभी मुझे क्या करनी चाहिए। उन्होंने कहा देखो वो एक ग्वाला है उनका नाम ही गोपाल है जो बलों पे तो पालन करते हैं इसलिए वे अभी महाराज बता रहे ना एक गलों की सेवा की बड़ी इसलिए कृष्ण तभी संतुष्ट होते हैं अगर कोई गैया को संतुष्ट करते गैया से बड़े गोपाल है ना इसलिए तुम गैया को खुशी खुश लाओ और गैयों की सेवा करो घास खिलाओ उनका गोबर साफ करो और ये काम धेनु गैया की चरण को आश्रय ग्रहण करते हुए अगर कृष्ण को पास में जाओगे गौवे माता है वो काम धेनु है अगर हो सके तो कृष्ण आपको माफ कर देंगे। तो उन्होंने काम धेनु शरण में गए हाँ उनको शरण में जाकर के उनको आगे देते हुए आकाश से उन्होंने गंगा को मंदा इनको ला करके पंचामृत को ला करके अगर कृष्ण मानो इंद्र को माफी करने के लिए देने के लिए कृष्ण ब्रजवासी को थोड़ा अलग रख दिए और कृष्ण थोड़ा अलग जाकर बैठे और इतने में इंद्र और कृष्ण को पास में अकेला आता है ये काम धन को लेकर के आज रहे कृष्ण के चरण में गिरते हुए बड़े उन्होंने स्तुति करते उन्होंने 10 श्लोकों को द्वारा उन्होंने इंद्र को कृष्ण को उन्होंने स्तुति किया जब स्तुति किया तब भगवान ने उसको सांत्वना दिए उनको माफ कर दिए और उन्होंने लेकिन कृष्ण संपूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं हुए भगवान ने कहा तुम्हारा अंदर में अभिमान हो गया था जिससे आप अनुग्रह से तब धनव सने जिसको अगर मैं कृपा करता हूँ ऐसे ही उसको अभिमान को दूर करते हुए उसको अगर मैं कृपा करता हूँ फिर उनको क्षमा प्रार्थना दिए फिर पुनः देखा हृदय से कृष्ण संतुष्ट संपूर्ण संतुष्ट ने लिए फिर नवद्वीप में जाकर के गोधुरु में जहाँ पर हमारे परिक्रमा जाना है वहीं पर जाकर उन्होंने भजन किया और भजन के दौरान उन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गौर हरि को उन्होंने दर्शन किया और महाप्रभु पिता ने आकर के मामले मांगे इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन ने प्रभु जो धारण किया है उसके बहुत बहुत सारे कारण है। अभी महाराज के मुख्य पुत्र बता रहे थे अभी कृष्ण का जितने सारे लीलाएं हैं कहते सर्वलीला मुकुट मंडलीला श्री राम लीला है। अभी भगवान को जय जय ज्वल रस सर्वरस सा जय जय रासलीला ही सर्वत्र मंडला। अभी प्रभु को रासलीला करनी है, लेकिन अभी रासलीला में ब्रज गोपियां तो भूल नारी का अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी इनको आकर्षण कैसे करूं। तो उन्होंने कहा आकर्षण करने के लिए ऐसे मुझे कुछ वीरता कुछ पौरुषत्व कुछ बहादुर दिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तब उन्होंने गिरिराज धारण करते हुए जैसे ऐसे उन्होंने पराक्रम दिखाया जिसको ब्रज गोपियों को मन को उन्होंने आकर्षण किया और आकर्षण करके उन्होंने अपना सर्व अभिष्ट जो लीला है इसलिए गिरिराज ने उनको जगह पर दिखाई पड़ रहा है उन्होंने पूजा बंद कर दिया। लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा की है जो कि रामलीला का जो प्लाट पर बनाया जिसको प्रभु को लीला रस का सरने की
Can you explain?
Om Jnana Jiviram Dasya Jnana Nijana Shalakaya Chakshu Jalitam Yena Tasmai Shri Gurudeva Govardhano Jayati Shayad Kuladi Rajo Yogo Vitami Runito Haridasa Vadimo Krishna Shaktam Abhavam Yudhitar Chitoya When Sri Krishna lifted Giriraj Govardhan and all the Brijvasis came underneath the shelter of Giriraj Govardhan, as we heard at that time, Indradev came with his Samvartaka cloud, with all of his force and power, trying to destroy all of Raja Vrindavan. He did not want any trace of Braja to remain within this universe. He was so angry and upset. His pride had been curtailed by this tiny little cowherd boy Krishna, who he considered to be like an ordinary human being. But this was his big mistake. Now, Sri Krishna came underneath Giriraj Govardhan with all the residents of Braja, and held Giriraj Govardhan up on the little finger of his left hand. Our Guru Maharaj, Srila Asi Bhaktivedanta Swami Maharaj, or Prabhupada, he has told that Krishna was giving the signal to Indra that to defeat you is simply the business of my little finger. So, in this way, Krishna exhibited his unlimited power. But how did he do this? Very, very sweetly. Just showing his little form of a cowherd boy. He did not have to exhibit some huge, gigantic form to perform this activity. So he came underneath Giriraj Govardhan, and there, underneath the hill, it was not just like clumps of dirt. No, Giriraj Govardhan had supplied very beautiful sitting places for all, so much grass for all the cows, beautiful rivulets and lakes and ponds, extremely pleasing atmosphere. And all of the Brijvasis, they stayed underneath this hill in very great comfort and joy. And during this time, they began to look at Krishna's very beautiful form. as he was holding the hill up and exhibiting his Shyam Sundar beautiful form, they all gazed at him. And they were drinking the beauty of Krishna's form. And they were talking with one another and constantly immersing themselves and tasting this beautiful rasa. How Krishna, look at how beautiful his hand looks. Look at the curvature of his arm. Look at how his slender waist is like this. They began to describe to each other. And Mother Yashoda was standing nearby. But Mother Yashoda was becoming worried because she thought that her little Lala was becoming weakened by performing this by exerting himself so much. And she wanted to come and feed Krishna, constantly feeding Krishna, massaging Krishna's hands. And the other cowherd boys, as Gurudev said, they were holding up their sticks to help Krishna. At one point, Mother Yashoda told Sridham, said, Krishna now is becoming somewhat tired. I think that you should hold up the hill for a while. Give Krishna a chance to rest. So, in this way, Krishna was performing his Narabat Leela, and all the Vrishvasis were immersed in this ecstasy of looking at Krishna's beauty without even blinking their eyes. And as Gurudev told, this is the first time that the gopis had the opportunity to come so close to Krishna in a public gathering. This is also one of the reasons why Krishna exhibited this Leela, to give this opportunity to the gopis to show them his prowess and attract them so that in the near future they would come and dance Ras Leela with him. So now, Krishna was holding up this hill for 7 days. 7 days and seven nights non-stop. And outside, what was going on? Indra was with all of his might. He was sending thunderbolts down. He was sending torrents of rain, unlimited, the type of rain that is sent at the end of the devastation of the universe, at the end of the day of Lord Brahma. And he was pounding and pounding. But actually, we also understand that Mahadev Lord Shiva, whose place is nearby on the bank of Manasi Ganga, he's called Chakaleshwar Mahadev. So at that time, Mahadev Shiv, he also wanted to serve Krishna. So therefore, he held up his trident above the hill. And in this way, all of the rains and everything were deflected by Lord Shiva's trident. And also it is said that he called for the Sudarshan Chakra of the Supreme Lord Vishnu to come and protect. Therefore he is called Shakaleshwara Mahadev. So underneath the hill, Mother Yashoda was telling Krishna, Krishna, you must take some rest for some time. And Krishna told Mother Yashoda, No, Maya, this hill, Govardhan himself, he is elevating himself in the air. I am not even doing anything. Simply Govardhan himself is holding himself floating in the air like this. So then, at this time, Indra began to realize that his powerful rains were having no effect whatsoever. Not even one piece of grass on Govardhan was being harmed by his rains. And then at that time, he began to realize, oh, I have come up against some greater power. What is this? I don't understand who is this personality. Actually, he really is the Supreme Lord. And now Indra, with embarrassment and great and fear in his heart, he now subsided all the rains and all the all of the thunderbolts. And gradually, he went away. And now when Krishna saw that everything had stopped, then Krishna told all the Vrishvasis, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, he told them, now everything is finished. Now you may all go out from underneath this Govardhan, and you may go back to Braja. And do not fear anything. Indra will not again come. So gradually now all the Vrishvasis and all the cows is described just like flowing oceans of milk, the beautiful white cows of Krishna, hundreds and thousands of them, began to filter out from underneath Giriraj Govardhan. And now, Krishna, after they were all out, now Krishna, just like a little child who is holding a mushroom, Krishna very nicely placed Giriraj Govardhan back down in its place. Jai Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai. So now, Indradev, he was feeling very embarrassed, and he realized that he had committed a very great mistake. So he approached Lord Brahma and he admitted to him this problem that he was having. And Lord Brahma told him, yes, I also in the past, I had some doubts. Because when I saw that Krishna had killed this huge snake, Aghasur, and I saw that that the Atma of Aghasur came out and entered into the lotus feet of Krishna, I began to wonder, who is this little cowherd boy? And foolishly, I also began to test his mystic power, and I stole his calves and cowherd boys. So I made this mistake, and Krishna also proved to me that he is the supreme, unlimited Bhagavan, millions and millions of times greater than my potency. So then he advised Lord Indra that Krishna, he loves the cows very much. Constantly he's performing Gopuja and he's massaging the feet of the cows. So in this way, if you bring a cow with you, it will be much easier for you to approach Krishna. So in the heavenly planets, there is the Surabhi cow, who is a great devotee of Krishna. So Indra went there and requested very humbly to Surabhi that she should come and help him to apologize to Krishna. So at that time, Indradev came with Surabhi just near to where we went on Parikrama the other day, and near to the place of Govindakunda. And in that area at that time, Krishna, after placing Govardhan, he was walking around Govardhan and he was inspecting the area. So he went off into a secluded forest area just so that Indradev could come at that time and he could come there without any embarrassment and approach Krishna. So when Krishna came to that place in the forest, Indradev came there with Surabhi, and Surabhi was in front of him. So now Surabhi approached Krishna and she began to worship Krishna, and she began to also bathe Krishna with her milk from her udders. And now Indradev began to offer very beautiful prayers to Krishna, and these prayers are recorded in Srimad Bhagavatam 10th canto. And he began to apologize to Krishna and admit to Krishna that he had become overwhelmed by a false ego, thinking that he was very great and powerful king of heavenly planets. But actually, he began to realize that the dust of Vrindavan is so superior to millions and millions of Indras such as myself. And he fell down at the lotus feet of Krishna and begged forgiveness. And so Krishna, he forgave Indra, considering him to be his devotee, and told him that he should now return to the heavenly planets. So in this way, Bhagavan Sri Krishna, he exhibited his unlimited potency, and he proved, and he taught lesson, that no anyone that worships him, they have demigods are far, far inferior to his potency. So anyone that worships Krishna, they don't need to worship anyone else. So Krishna exhibited this beautiful pastime to show this, and to at the same time show the sweetness of his Braja Leelas, how in every single way Krishna is attracting the hearts and souls of the Brijvasis. So anyone that hears this pastime, anyone that narrates this pastime, anyone that takes part in this Annakut ceremony, Srimad Bhagavatam is giving so many benedictions, they will never have to beg anywhere. They will never be in want. They will never have to fear anything. So in this way, Krishna, the supreme Lord of Braja, the supreme attractor of the hearts of all the Vrijvasis, showed this Vrindavan Leela, and today, under the guidance of our Gurudev, we have the opportunity to also go to Giriraj and to perform the same Anakut festival that was performed 500 years ago by Srimadhavan Tripuripad, and to pray at the lotus feet of Giriraj Govardhan, Nijanikati Nivasam Dehi Govardhanatham. Then please, Giriraj Govardhan, give me a residence eternally at your side so that I may see the beautiful pastimes of Krishna with all of his associates.
इस प्रकार से इंद्र का मान वर्धन किया और सुरभि गैया को लेकर उन्होंने अपना अपराध क्षमा कराया और ऐरावत के जल से अभिषेक कराया और उनका अभिषेक करके नाम रखा गोविंद गोविंदति इति गोविंद जो गो गो गोपी गोवत्स सबका ही आनंद प्रदान करते हैं विंदति कृष्ण लीला के अंतर ध्यान होने के बाद में 200 वर्ष बाद करीब बज्रनाथ कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज में आए महाराज परीक्षित शांडिल्य मुनि और भागुनी मुनि इत्यादि सब लोगों को लेकर के कृष्ण के लुप्त चिन्हों का उद्धार किया कुंडों का निर्माण किया और यहां पर गोवर्धन ने कृष्ण लीला जो हुई थी उसी के रूप में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा की और वो भी कालांतर रूप में पीछे से मुसलमानों के आक्रमण पर श्रीनाथ जी को पुजारियों ने मट्टी के अंदर में गाड़ दिया और भाग गए बहुत वर्ष हो गए उसके ऊपर में बांस के बगीचे पेड़ पौधे सब उग गए अभी करीब करीब 550 वर्ष पहले माधवेंद्रपुरी पादी ब्रिज में आए जति वहां आंदोलन ग्राम के करीब में भजन कर रहे थे उनको आदेश हुआ मैं बहुत दिनों से मिट्टी के अंदर में गड़ा हुआ हूं हमारा उद्धार करके हमारी पूजा करो हमारे अंग गर्म हो गए हैं उसको सुशीतल करो अभिषेक इत्यादि के द्वारा ध्यान छूटने के बाद में माधवेंद्रपुरी जी ने गांव के लोगों को सहायता लेकर और गए और जहां गोपाल जी थे उसका चिन्ह देख करके और वहीं जगह खुदवाया बड़ी सावधानी से उसमें श्रीनाथ जी का सिद्धि ग्रह आया उसको पहाड़ के ऊपर में पत्थरों का घेरा बनाकर उनको रखा और उनका भी अभिषेक किया मथुरा के धनी मानी लोग सब लोग इसमें सुन करके जो गोपाल जी प्रकटित हुए हैं श्रीनाथ जी सब लोग आए दूध दही मधु इत्यादि के साथ में उनका अभिषेक किया कितने दिनों तक तो अभिषेक किया और उसके बाद में बड़ी भूख लगी है एक महीने तक विराट अन्नकूट किया गया मथुरा के सेठ लोग एक एक दिन उत्सव करने लगे इस प्रकार से महीनों चला गिरिराज जी ने कहा जो सब तो ठीक हुआ श्रीनाथ जी ने हमारा अंग भी सुशीतल नहीं हुआ पूरी से वो चंदन ले आओ मलय चंदन और उसे घिस करके हमारे अंगों पर लगाओ तब पूजा का भाग किसी के ऊपर में दे करके गए इसका इतिहास हम लोग शाम को विशेष रूप में वर्णन करेंगे। अभी हम लोग गो पूजा करेंगे। मंदिर से पुजारी एक आदमी चला जाना, वन महाराज, पूजा का सामान, आरती का सामान और पंचपात्र इत्यादि, चमर तमर पंखा सब ले आना, उनकी परिक्रमा करके पूजा करके और ब्रजवासी ब्राह्मण का पूजा करेंगे। और फिर इसके बाद में 10 बजे के करीब में, 11 बजे हम लोग यहां से अन्नकूट का सारा सामान लेकर गिरिराज जी के मंदिर में जाएंगे। खास गिरिराज जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उनका भोग निवेदन करेंगे और फिर 12 बजे 1 बजे तक लौट करके सभी को महापुरुष उनका गिरिराज जी का प्रसाद वितरण करेंगे। आज यहीं तक हम लोगों का समाप्त।
हरे कृष्ण।
यूसुफ ट्रांसलेट।
हम लोग जब गिरिराज जी को गुरुजी के साथ,
अरे भागो मत अभी बैठो,
हम लोग गुरुजी के साथ जाते हैं गिरिराज जी को निवेदन करने के लिए। लौटते समय बहुत से लोग कोई डर न करते गुरुजी के पास प्रसाद देंगे महसूस करके अच्छे अच्छे चीजों में बैग में जेब में भर लेते हैं, ऐसा न करें, खाली गालियां ले आते हैं। पीएम नोटिस लास्ट ईयर रिपोर्ट लास्ट ईयर सो मेनी रिपोर्ट इज आफ्टर इट ओपनिंग ऑन द वे बैक दे आर नो पी आर दैट प्रसाद इज गो टू गुरुदेव एंड रेस्ट ऑफ अस देयर इज स्पीक दे टू बी द अंडरलाइन पॉकेट एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी बास्केट इज बीइंग बैक टू प्रेमानंद प्रभु सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू अनाउंस दिस नो वन शुड स्टोल एनीथिंग And super allowed also. No one should spill anything after prasad. All prasad will come here and Premanandu and other will distribute among us. Premanandu told them, the Prati Bhaksa will come for Chai Bhaktara Kikari. Prasad Kriya Samaya, Bhala Bhala Jigis, the Dage of Prakare Bholanen. Ekam Jagatam Nakaran, Hare Krishna.
So in this last time, it was pride, it was trust. Therefore we tend to shelter Surabhi and then here offered worship to Krishna. Therefore Krishna received the new name Govinda, who always increases the happiness of the cows, of the gopis, of the gopas. His name is Govinda. I will ask that the elephant carrier Indra personally perform the Abhishek of Krishna. Then 200 years after the disappearance of Krishna's pastimes, the great grandson of Krishna, Vajana, came here and re-established all the lost places of Krishna's pastimes. At that time he established the worthy of Srinathji. Then some thousands of years after, due to fear of the Muslim invaders, the Gujaris hid Srinathji in the ground, just then the Sankarshan Kund. Then Sri Madhavendra Puri, he came to this place, and night time he received the order from Srinathji. Oh, I have been hidden under the ground and my body is burning. Please re-establish my seva. Therefore, Sri Madhavendra Puri, taking the local villages, but Srinathji had been covered by trees and creepers so long he was under the ground. Very carefully they extracted the earth and they discovered Srinathji there, or Gopalji. They established Gopalji on a rock, and again they performed his seva puja. All the rich, wealthy persons from Mathura came and contributed. Therefore, for 1 month they performed Abhishek and Anukut of Krishna. Every day they offered thousands and thousands of preparations. But still, after 1 month, Gopal said to Madhavendra Puri in the dream, "My body is still burning. Please bring me some Malaya Chandan, some sandalwood. By grinding that and placing it on my body, I may feel some relief." Therefore, today we remember all these things. So now we'll perform some Gopujan, some worship of the cow, worship of the Brijavasi Brahmanas, and exactly at 10 o'clock, more or less, from here, we'll take all the ingredients and go on off and directly to